नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए विचार विमर्श हुआ। यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री रहा, जिसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन के साथ संबोधित किया। प्रदेश में लोगों को जल संचय और मकानों तथा भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे जल संग्रहण कर बरसात के पानी का अधिकतम उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गांवों तक लोगों और प्रशासन की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के अनुदानित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन और दलहन के तहत ये राशि मंजूर की गई है। योजना के तहत राज्य में 70,000 फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने बताया कि बीज वितरण और फसल प्रदर्शनों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 51,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में ये राशि डीबीटी की जा चुकी है। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम कुस्तला का रहने वाला हूँ और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी 4 एकड़ जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 1,12,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिसकी का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूँ और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
पाली जिले में जनजातीय समुदायों के विकास के उद्देश्य से आज से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि ये अभियान 25 मई तक चलेगा। जिले की दूर दराज की ढाणियों और गांवों में आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से 21 से 23 मई तक जनसुनवाई होगी। वहीं संतृप्ति शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। कल 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ, वहीं 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पारे में 1 से 3 डिग्री तक का उछाल आया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कई क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आज से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है।
पिछले एक सप्ताह से हीट वेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं पे नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर है। विशेष रूप से मई के महीने में जो थार रेगिस्तान क्षेत्र और आसपास का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, इसमें जो हवाओं का पैटर्न है, खासकर जो सतह की हवाएं हैं और ऊपरी वातावरण की है, तो इसमें एक एंटीसाइक्लोनिक चक्रवाती, यूं कह सकते हैं प्रति चक्रवाती तंत्र बनता है और इसी के असर से सरफेस पर हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल पिछले एक वीक से ये एक टिपिकल हीट वेव का स्पेल है और अभी भी अगले एक सप्ताह 10 दिनों तक ये हीटवेव का स्पेल खासकर डेजर्ट क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है, इसमें जारी रहने की संभावना है।
चूरू जिले के मानपुरा में एक खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। वहीं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पनियाला के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। उधर अम्बाला हाईवे पर एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में देशी विदेशी सैलानियों और आमजन को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया जाएगा। संग्रहालय दिवस के अवसर पर पाली में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में भी थार हेरिटेज म्यूजियम में विरासत संरक्षण पर विचार गोष्ठी रखी गई है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज विशेष रेलगाड़ी चलेगी। ये विशेष रेल सेवा 1 दिन के लिए संचालित होगी। ये ट्रेन आज सुबह 9:30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर करीब 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसका मंडोर, ओसिया और फलौदी सहित सभी निर्धारित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सवाई माधोपुर में नई वंदे भारत ट्रेन की गति का परीक्षण पूरा किया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलगाड़ी को कोटा मंडल के विभिन्न मार्गों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रूपये की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीटवेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।